ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुः। हम यहाँ प्रयोजनभूत सात तत्वों की बात देख रहे हैं। इसमें हमने प्रयोजनभूत तत्वों के नाम, उनका लक्षण यानी उनकी परिभाषाएं और सातों ही तत्व संबंधी जीव की जो विपरीत मान्यता हो रही है उसको हमने देखा है। अभी तत्वों का यथार्थ श्रद्धा यानी जो का त्यों श्रद्धा, जैसा स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने बताया है वैसा हम कैसे जानेंगे, श्रद्धान करेंगे, उसकी बात चल रही है। देखो, ये प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं तो उसमें पहली कंडीशन है जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए होने चाहिए। ऐसी कंडीशन क्यों लिखी है, क्यों डाली है? तो प्रत्येक जो धर्म कहलाता है, दर्शन जिसको कहेंगे, बौद्ध दर्शन, वैदिक दर्शन, उसको दर्शन कहते हैं। ये ज्ञान दर्शन वाला दर्शन नहीं है। फिलोसॉफी में ये जो अनेक अलग अलग धर्म कहलाते हैं ना, जैसे बौद्ध धर्म कहेंगे उसको बौद्ध दर्शन कहते हैं। तो उनके अपने अपने अलग अलग तत्व माने हुए उन्होंने। जैसे सांख्य मत नाम का एक मत है, एक धर्म है, उन्होंने 25 तत्व अलग अलग बताए तो उसका वो वर्णन अलग रीति से करते हैं और सब पूरा एक कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता है उसमें सारा। कोई कोई कहते कि जीव एक अलग तत्व है, ज्ञान एक अलग है, दोनों मिलकर फिर जानने का कार्य करते हैं, या जीव जब मोक्ष हो जाता है तो ज्ञान से शून्य हो जाता है। ये सारे उनके तत्व है। तो ये तत्व कैसे खोटे है इसका हमारे आचार्यों ने बहुत विस्तार से वहां पर चर्चा की है। उनके तो सभी दर्शनों का, सभी धर्मों का अभ्यास था, अकेले जैनियों का नहीं था। हम ही अपने को महान समझते नहीं कि हम सभी धर्मों का अभ्यास करेंगे फिर निश्चित करेंगे, तो उसमें तो एक तो हमारी इतनी बुद्धि भी नहीं है और इतना समय भी नहीं है अपने पास। पहले में पहले जो सही है, जो आचार्यों ने ऑलरेडी प्रूव करके बताया है, ऐसे ग्रंथ भी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पांचवे अधिकार में भी, सभी मतों की समीक्षा ने, समीक्षा करना इन्हें क्या है, कंपेरिटिव सब स्टडी करना और उसमें से सही कौन सा है वो बताना।
कल एक पुस्तक का नाम आपने बताया,
स्यादवाद मंजिरी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें भी सभी दर्शनों की इतनी विस्तार, वो तो इतना ज्यादा पुस्तक है 500 पेज वाला, सभी दर्शनों की और जैन दर्शन की उसमें विस्तार से चर्चा करके कौन सा सही है ये सिद्ध किया है। तो ये हमें तो क्या कहना है कि ये जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए क्यों, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ है। उन्होंने स्वयं ये जो मोक्ष मार्ग पर चलकर अरिहंत अवस्था प्राप्त की है और यह उपदेश बताया है, तो हम भी उसी मार्ग का यानी उस तत्वों को जानकर वैसे हमारी श्रद्धा करके हम भी स्वयं मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहली कंडीशन है जिनेन्द्र भगवान ने बताया हुआ होना चाहिए। हम जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए तत्व तो मानते हैं, हमने भी याद किया है जीव अजीव आश्रय बंध समन निजरा मोक्ष, परंतु हमने उसका सही स्वरूप नहीं माना है तो हमें उसका लाभ नहीं होता है। कि इन तत्वों को और जीव को एक माना, या आश्रव से समर होता है मान लिया और ये यानी शुभाशुभ भाव से ही मोक्ष हो जाएगा ऐसा मान लिया, ये सारी गड़बड़ी हुई, तो हमने सही श्रद्धा नहीं किया तो भी हमें कोई उसका लाभ नहीं होगा। तो जैसे तत्व है क्या हमें वैसे भासित होते हैं, यानी अकेले वैसा मानना यानी वैसा रट लेना, ये बात नहीं है। हमने आपको पूछा और आपने सही जवाब दिया तो हमने सही माना कि नहीं माना? नहीं माना। हमें क्या वो अंदर से वैसा प्रतीत होता है कि नहीं होता? जब आश्रव को दुखरूप भाव बताया है क्या हमको वो दुख रूप लग रहा है कि सुख रूप लग रहा है, है ना, हमको वो कैसा लग रहा है, हाउ वी फील इट अबाउट इट, ये बात महत्व की है, उसकी चर्चा भी चलेगी। तो इसको कहते हैं जैसा है वैसा है, नहीं जैसा वो हेय है कि गेय है कि उपादेय है, इसको कहेंगे जैसा बताया है वैसे मानना, उसको कहेंगे यथार्थ श्रद्धा। उसके लिए हमने सुबह वो घरों का एक दृष्टांत भी देखा था, हमने पढ़ा था उसको विस्तार से, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो अभी ये जो पत्रांक 24 है उसमें दूसरे पेज के लास्ट में, आपको शायद तीसरे पेज पर होगा, मैं पढ़ती हूँ। आज तक इस जीव को अजीव तत्व की ही महिमा भासित हो रही है, मिला पेज नंबर कौन सा है गुजराती में?
गुजराती मालूम है,
गुजराती में
155। हाँ मिला ना, अभी पढ़ेंगे। आज तक इस जीव को अजीव तत्व की ही महिमा भासित हो रही है, यानी वो पर पदार्थों की ही महिमा भाषित होती है, और पर पदार्थों में भी ये धर्म अधर्म आकाश काल की क्या बात करें, ये तो पुद्गल ही इंद्रियों के द्वारा क्या जान रहे हैं, हम किसको जान रहे हैं, अभी बात आई ना, पुद्गल के स्कंदों को ही हम जान रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के जो उनके स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय ही तो हमें जानने में आ रही है, और उसी में हम लुब्ध है। गेयों के कौन से गेय, पुद्गल, उसी को जानने में हम लुब्ध हैं। अमेरिका आते हैं तो पूछते क्या देखा वहां पर,
पुद्गल,
तो आपने वो नायगारा फॉल देखा कि नहीं देखा, और वो दूसरा फॉल देखा कि नहीं देखा, विंटर में जो फॉल देखने के आते हैं ना, यानी क्या होता है, वृक्षों के कलर बदलते हैं, वृक्षों का फॉल और ये पानी का फॉल, हम किसमें मजा मानते, दूसरों के फॉल देखने में उसमें अपना फॉल है, पतन हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। देखो ये हम तो गेय लुब्ध हो रहे हैं, तो आप कहेंगे अजीव तत्व गेय अभी बताएंगे, परंतु गेय ने कैसा गेय कैसे जानने योग्य है, तो वह मैं नहीं हूं ऐसा जानने योग्य है। हमने क्या समझा, जानने योग्य उसी को जानते रहो। हमने किसी भाई से पूछा, आपने इतनी रिटायरमेंट ली अब क्या कहते, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो सबको जानता रहता हूं, क्या करता है, बस सब कुछ जानता हूं, सुबह पेपर पढ़ता हूं उसमें जो कुछ है वो जान लेता हूं, पूरा दिन टीवी देखता हूं वो जान लेता हूं, आप क्या करते हैं वो स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन होता है उसको जान लेता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, क्या इसको जानता हूं ज्ञाता दृष्टा कहा है, अपना तो पता ही नहीं मैं कौन हूं, और मान लिया ये ने अपनी कल्पना से मान लिया कि जानते रहो सबको जानते रहो, आलसू होकर कुछ मत करो फिर जानते रहो, इसी को वो ज्ञाता दृष्टा मानता है, तो इसको यथार्थ श्रद्धा नहीं कहेंगे। तो इसको क्या हुआ है, अभी तक अजीव तत्व की महिमा भाषित होती है, गेय लुब्ध, गेय किसको कहते हैं, जो पदार्थ जानने में आते हैं उसको कहेंगे गेय, मैं स्वयं कौन हूं, ज्ञायक, जानने वाला, और जो अपने ज्ञान में आते उसको क्या कहेंगे, गेय। अब इस पेन को हम जान रहे तो ये पेन हमारा गेय हुआ, पंखा को जान रहे तो पंखा हमारा गेय हुआ, तो ये सारे जो पुद्गल अभी यहां दिख रहे स्कंद वो क्या है, हमारे गेय है। तो गेय लुब्ध होकर परद्रव्यों को जानने में ही इस जीव ने अनंत भव धारण किए, एक दो की बात नहीं, इस मनुष्य भव को गमाया इसी बात नहीं है, हम कब से है, पूर्वी अनादि से है, और अभी तक हम सिद्ध नहीं हुए, इसका अर्थ क्या है, हम परिभ्रमण कर रहे हैं, अभी जन्म लिया है यहाँ पर, मनुष्य हुए हैं, तो इसका अर्थ क्या है, हम परिभ्रमण करते करते यहाँ तक आए हैं, तो इतने काल तक हमने क्या किया, अपने को नहीं जाना,
अपने को नहीं जाना,
तो परज्ञेय को जानने में ही यह लगा रहा, और अनंत भव उसने धारण किए, परंतु इन सबको जानने वाला मैं ज्ञानवान यानी ज्ञायक, उसकी महिमा इस जीव को नहीं आई, ये जानने वाला है कि, देखो हम यहां आते हैं कुछ देखते हैं, अरे वहां कितनी सीनरी अच्छी है, ये कितना वृक्ष कितना अच्छा है, देखो इसके पत्ते कैसे, अरे ये तो कई अद्भुत ही इसका आकार है, तो उसको जानते पर वो निर्णय किया किसने, ये जाना किसने, ये जानने में तो आ रहा है, ये वस्तु यहाँ है सामने दिख रही है, तो ये किसको बता रही है कि मेरे ज्ञान में आ रही है तो मैं यहाँ हूँ, ये बात इससे सिद्ध हो रही है।
अस्तित्व,
अस्तित्व इससे ख्याल में आ रहा है क्योंकि ये घूम रहा है कि पंखा, हाँ घूम रहा है, पंखा है कि नहीं है, है। आत्मा है कि नहीं है वो मालूम नहीं, किसको पता। अरे मगर वो पंखा है ये निश्चित किसने किया, आत्मा के बिना जाना किसने, तो मैं जान रहा हूँ मेरे ज्ञान में आ रहा है ये हर समय हमारे पता चल रहा है
वो सामान्य की,
परंतु मैं हूँ इस बात का उसको मैं कौन हूँ उसके बारे में उसके कंफ्यूजन चल रहा है, उसका निर्णय नहीं है। बाकी जो जानने में आ रहे गेय वे तो है, परंतु गेय तभी नाम दिया जाता है जब कोई जानने वाला ज्ञायक है। तो ये गेय मेरे ज्ञान में आ रहे है मैं जान रहा हूँ, यानी वो यहाँ मैं स्वयं विद्यमान हूँ ये बात सिद्ध होती है, परंतु जीव उसकी गौणता हो जाती है उसकी। देखो प्रत्येक द्रव्य की पर्याय उसमें स्वयं में ही होती है। अभी आप दर्पण के सामने जाते हैं, मिरर के सामने क्या दिखाई दे रहा है वहां पर, रिफ्लेक्शन। सामने हमने कोई मोमबत्ती रखी, कोई अग्नि रखी, और वो दर्पण में क्या दिखाई दिया, मेनबत्ती, अग्नि जलती हुई। हाँ, तो ये जो मिरर में जो मेनबत्ती है, अग्नि है, वो किसकी पर्याय है, मेनबत्ती की है कि मिरर की है, मिरर की है ना। तो हमने क्या समझा है, मेनबत्ती की है, उसके कारण हुई ऐसा माना हमने। देखो यहाँ क्या कहते हैं, दर्पण में दिखने वाला अग्नि का प्रतिबिंब यह दर्पण की पर्याय है, उसकी अवस्था है, वह दर्पण की स्वच्छता को जाहिर करती है। क्या जाहिर करती है, रिफ्लेक्टिविटी को जाहिर कर रही है। प्रतिबिंब दर्पण में दिख रहा है, दीवार में नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कहते हैं, यह दर्पण है इसमें रिफ्लेक्टिविटी है, रिफ्लेक्टिविटी यानी स्वच्छता, उसमें झलकता है ना, दीवार में तो नहीं झलकता। तो दीवार में तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है और मिरर में हो रहा है, तो ये किसका गुण है, मिरर का। दर्पण के कारण होता तो दोनों में होना चाहिए था। तो दर्पण में दिख रहा है तो ये प्रतिबिंब क्या बताता है, दर्पण रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी रिफ्लेक्टिविटी, उसका गुण जाहिर कर रहा है।
ये जो उदाहरण आपने दिया है वो समझता की छठी गाथा है कि वो कंपेरेटिव है।
हाँ, छठी गाथा में तो जो है ना,
जो उदाहरण दिया,
नहीं नहीं वहाँ जो है ना, मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं ऐसी हाँ, बात है वहाँ पर,
क्योंकि गुरुदेव पीछे दाह का उदाहरण दे के समझाते हैं।
हाँ, वो तो अग्नि दाहक पाचक वो बात अलग है। यहाँ जो कुछ बात है ना कि दर्पण, अभी हम ज्ञान दर्पण पर घटित करेंगे, अभी हमारे ज्ञान में, अभी दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसने किसको बताया, जाहिर किया दर्पण की स्वच्छता को। अभी हमारे ज्ञान में ये सारी बातें आ रही, झलक रही है, हम जान रहे हैं, तो जान रहे हैं ये किसको जाहिर कर रहे हैं, आत्मा को, हमारे ज्ञान स्वभाव को जाहिर कर रहे हैं। हम जो कोई जान रहे हैं वो किसको जाहिर कर रहे हैं, हमारे ज्ञान स्वभाव को जाहिर कर रहे हैं, ज्ञान गुण को जाहिर कर रहे हैं। यानी पदार्थों की जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है, क्या जाना हमने, पंखा घूम रहा है, यह हमने जाना, यह हमारी ज्ञान पर्याय हुई, पुद्गल को जानने वाली हुई, परंतु वो किसको जाहिर कर रहे, पुद्गल को नहीं, अपने ज्ञान गुण को, कि यहाँ जानना 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 ऐसे कार्य हर समय चलता है, तो यहाँ ज्ञान गुण में से ये पर्याय होती है, तो ज्ञान गुण जाहिर होता है। ज्ञान पर्याय के द्वारा हमने ज्ञान गुण को पहचाना, क्योंकि जो जहां जानने का कार्य होता है वही तो ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण कहाँ है,
जहां पर्याय है,
आत्मा में है। तो ज्ञान गुण आत्मा में है, तो क्या अकेला एक ज्ञान गुण है क्या,
नहीं।
अनंत गुण है। देखो हमने ज्ञान की पर्याय किसको, पुद्गल के जानने वाली ज्ञान की पर्याय द्वारा हमने ज्ञान गुण को जाना, ये निश्चित किया, जाना निश्चित किया, और ज्ञान गुण कहाँ है, तो आत्मा में है, तो हमने आत्मा को निश्चित किया। तो आत्मा है कि नहीं है? अरे है ना, जहाँ ये पर्याय चल रही वही तो, यानी जिसको कहते हैं उसको पकड़कर हम अंदर चले जाए। किसको? ज्ञान की पर्याय हो रही है, प्रत्येक जीव को पता चल रहा है। तो ज्ञान गुण पर्याय के द्वारा हमने ज्ञान गुण को जाना, क्योंकि पर्याय कहाँ होती है? जहाँ गुण है वहीं पर पर्याय होती है। जो गुण का द्रव्य है, जो गुण का क्षेत्र है, वही तो पर्याय का द्रव्य और क्षेत्र है। तो जहां ज्ञान पर्याय हो रही है वहीं पर ज्ञान गुण है, और जहां ज्ञान गुण है वही तो आत्मा है। तो आत्मा है कि नहीं हमको पता नहीं, परंतु ये सबको जानने वाला तो आत्मा है ना। ऐसा कहते हैं ना शास्त्र में आता है, तू अंधा है, दुनिया को देखता है और अपने को नहीं जानता देखता, तू अंधा है। सब समय ज्ञान दीपिका में आता है, धर्मदास जी सुल्लक जी है तो वो कारंजा में गए थे, वहाँ वो भट्टारक थे, ज्ञानी पुरुष थे, और ये तो धर्मदास सुल्लक जी तो व्रती थे, व्रत अंगीकार किए थे, पांचवें गुणस्थान के योग्य व्रत उनका अंगीकार किया था, लोग उनको पूजते थे, बहुत उनकी महिमा हो रही थी, ये कितना व्रती है, कितना साधक जीव है, ऐसा ऐसा। परंतु वहां गए तो उनको पूछा कि तू जानने वाले को जानता है, वो क्या होता है, आत्मा क्या होते, कैसे उसको कैसे पाना? तो उन्होंने कुछ बता दिया, तो विचार करते करते चले 12 साल के बाद फिर वापस आ गए, मुझे नहीं मिला, आत्मा नहीं हुआ, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। तो उन बहुत ऐसे कड़क शब्दों में बोले, तू अंधा है, देखने वाले को नहीं देखता। तो फिर उस बात पर उनके विचार चले, और फिर उस अंतर्मुख दशा में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। बाद में उन्होंने ये सम्यक ज्ञान दीपिका, चंद्रिका नहीं, ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका तो टोडरमल जी की है, उन्होंने वो सम्यक ज्ञान दीपिका नाम का एक ग्रंथ लिखा। तो ज्ञानी के ऐसे कठोर शब्द भी काम कर गए ना। हाँ,
जो बताया ना, जो आत्मा गुण पर्याय की जो बात की अभी, इतना ही है,
इतना ही है,
नेक्टर है,
कुछ नहीं, ये तो इतना आसान है,
शास्त्र जानने, वो ही जानने के लिए लिखा गया,
ऐसा ही है भाई। ऐसा नहीं, सरल नहीं समझते ना तो बहुत ऐसा 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 करके समझाना पड़ता है, नहीं समझे आप? मेडिकल प्रैक्टिस में हमारे पास पेशेंट आते थे, किसी को बताए डोंट वरी, ये तो अच्छा हो जाएगा एक दिन में, उसको वो पसंद नहीं आता है। क्या चाहता है? ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, नहीं प्रिस्क्रिप्शन में नहीं चलेगा, वो सारे उसके सारे टेस्ट कराओ, ब्लड यूरिन वो सब करो, एक्सरे कराओ उसके, अभी जितने नए नए निकले ना सोनोग्राफी करा लो, फिर MRI करा लो, और जो कुछ अभी नया निकला है वो सब कुछ टेस्ट करा लो। सब टेस्ट आएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, और फिर उसमें नॉर्मल भी होगा, तो भी फिर ये करो वो करो, ऐसा लंबा चौड़ा वो बहुत सारा खर्चा करके आता है, और फिर स्पेशलिस्ट भी ये करो वो करो, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट। देखो हमारे वहां कोई पीडियाट्रिशियन है, वो तो 15-15, 20-20 पेजेस का सारा लिख के देते हैं, सारा लेके आते हैं, डॉक्टर साहब इसमें मैं क्या करूं बोलो। सच कहूं, हमारे एक रिश्ते में है तो उनको कुछ सिर में ऐसी झुंझुनी आती थी, जिसको मुंगी खाली चढ़ी जाती, खाली चढ़ी, घबरा गए अभी, क्योंकि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करे। तो उन्होंने ऐसे सारे टेस्ट कराए, सारे नेक से लेकर सब ब्रेन तक, सब स्कैनिंग विनिंग सब कुछ कराए, हो सीटी स्कैन ये वो सब कुछ कराए, मारे वगैरह। तो उनकी तकलीफ तो दूर नहीं हुई, दवाई तो सब कुछ खा रहे थे। फिर एक दिन हम गए तो मुझे बताया, ये देखो डॉक्टर दिखता है ना तो सब अपना अपना रिपोर्ट दिखता है,
सब रिपोर्ट काटा दे।
तो मैंने सब सुन लिया उनका, मैंने बोला आप सोते हो तो सिर के नीचे कितने तकिया रखते हो? तो मैं इतना बड़ा ऐसा डबल तकिया लेके सोता, मैंने बोला आज से वो तकिया मत यूज करना। तो दूसरे दिन फोन आया, मैं अभी ठीक हुआ हूँ पूरा, मुझे कोई तकलीफ, तभी से उनके कोई तकलीफ नहीं है। परंतु ऐसी सादी सरल बात किसी को बताएंगे तो विश्वास नहीं होता। तो ये आपने बताया ना, ये ज्ञान को ये जानने वाला ही तू है, नहीं ख्याल में आता है, इतनी वो सहज बात है। परंतु फिर वो कहेंगे वो सारे पुद्गल की पर्याय समझानी पड़ेगी, कर्म की थियोरी समझानी पड़ेगी, फिर इतना करके तो समझ। सरल नहीं समझता है ना। लोग पूछते ना इतना सारा समझने की क्या जरूरत है, अरे सादा समझता नहीं ना इसलिए हमको डिफिकल्ट समझाना। देखो देखो, सर्व पदार्थों को जानने वाली ज्ञान की पर्याय आत्मा की अपनी है, वह ज्ञान गुण को जाहिर करती है। प्रतिबिंब देखने में जो मग्न हुआ उसे दर्पण की स्वच्छता का भान नहीं। हम सुबह जाते ही आईने के सामने खड़े होते हैं और मुंह देखते हैं, कैसे बाल बिखरे हैं, कहां क्या दाग लगा है, कुछ वो सब देखते हैं, है ना। आईना दिखता है कि प्रतिबिंब दिखता है? सामने तो आईने के खड़े रहते हैं पर दिखते तो प्रतिबिंब को। आईने की स्वच्छता का भान नहीं है कर तो वो गौण हो जाता है। वो है ये ख्याल है, नहीं तो हम दीवार के सामने खड़े रहते हैं। खड़े तो हम आईने के सामने रहते, मिरर के सामने खड़े रहते हैं, क्योंकि वहीं पर वो दिखने वाला ये पता है। फिर भी दिखते किसको, गौर किसको करके, किसको निहालते हैं हम, जिसको कहना ना निहारना, निहारने यानी अच्छी तरह से देखना, किसको देख रहे अच्छी तरह से, प्रतिबिंब को जो हमने अपना स्वरूप मान लिया है। परंतु हम आईने को देखने के लिए नहीं है, वो बराबर रखा है कि नहीं वो देखने के लिए नहीं जाते वहां पर, क्यों प्रतिबिंब देखने के लिए जाते हैं ना। हाँ, तो उसकी स्वच्छता नष्ट हुई कि नहीं हुई?
नहीं
नहीं हुई, वो तो है ना, दर्पण तो दर्पण है। ऐसा अगर हो जाता तो प्रतिबिंब में नहीं दिखाई देता, ये तो दृष्टांत हुआ। वैसे ही ज्ञान में पदार्थ झलक रहे हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, और हम किसमें अटके हैं? उन ज्ञान में जो झलकता है प्रतिबिंब, उसी को जानने में अटके, गेयों को जानने में अटके। उस समय ज्ञान कहाँ गया? अरे वहीं पर है, वही तो दिखा रहा है गेयों को, पर हम जैसे वो दर्पण को गौण करके प्रतिबिंब को मुख्य करके जानते, मुख्य करके जान रहे। अगर आप दर्पण को जानना चाहते तो है वहां पर वो मौजूद, तब आप ट्राई करके देखना जरा। पूर्वी हम दर्पण की स्वच्छता को, मिरर की वो कांच को देखने का प्रयत्न करो, आप सामने होते हुए प्रतिबिंब ऐसे गायब हो जाएगी आपकी आंखों के सामने से। क्या वो नहीं है? है वहां पर, परंतु हमने उनको गौण करके दर्पण को देखना शुरू किया। करके देखना आप, तो दर्पण ही दिखाई देगा, प्रतिबिंब है वहां पर, वो गौण होकर हमको दर्पण को मुख्य करेंगे। अभी जहां प्रतिबिंब हमें सारे पदार्थ गेय रूप से भासित हो रहे हैं, ज्ञान तो वही है ना जो गेयों को बता रहा है, हम वो प्रतिबिंब को गौण करके ज्ञान को मुख्य करके जान सकते हैं। अपने ज्ञान स्वभाव में लीन हो जाओ, इसका अर्थ क्या है? क्या वो प्रतिबिंबों से यानी गेयों से खाली हो जाएगा तभी जानना है उसको?
वो
ये तो प्रकाशक जो है वही तो ज्ञान है, जिसमें स्वपर भाषित हो रहे वही तो ज्ञान है। अभी ये जो पेन मेरे में भाषित हो रहा है मुझे, हमारा लक्ष्य क्या है? ये है वो काला है, फिर उसमें राग के साथ मिला देते हम ज्ञान को। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ब्लू होता तो अच्छा होता, इस पर मेरा नाम लिखते तो अच्छा होता, ये सारे हमारी विचारधारा राग के चलते रहते। ये ज्ञेय जिसमें भाषित होता है वही तो ज्ञान है, हम वो ज्ञान को जानने की कोशिश करो। अंतर्मुख ध्यान करो का अर्थ क्या होता है? भेद ज्ञान करो का अर्थ क्या है? ये पर पदार्थ तो पर छुटे ही है, अपने ज्ञान में जो गेयों के वहां झलक रहे हैं, वो गेयों के प्रतिबिंब के तरफ अपना लक्ष्य है। अब हम वही जो प्रतिबिंब है वही तो ज्ञान है, वहीं पर है। जैसे जहां हम दर्पण में जहां प्रतिबिंब है वहीं पर वो दर्पण है, हम दर्पण को मुख्य करके जान सकते हैं, प्रतिबिंब गौण हो जाता है। यहां भी हम ज्ञान को मुख्य करके अपने को ही जानना है। गेयों के सारे ज्ञान तो यहीं पर हो रहा है, बाहर से कोई ज्ञान नहीं आता है, तो हम उसी को ज्ञान को मुख्य करके अपने को ही जान, अपने ज्ञान को ही नहीं अपने को जानेंगे तो ये ज्ञान अपने को भाषित होगा, तो उसमें हमें अन्य कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्यों वो गौण हो ही जाएगा। गेयों के प्रतिबिंब गौण हो जाएंगे और वो राग द्वेष के परिणाम भी गौण हो जाएंगे, क्योंकि हमने ज्ञान को जानना शुरू किया है। इसको कहते अपने अपना ग्रहण करो और राग को छोड़ो।
मैं सबको यही कसरत करनी है, इसी को कसरत के प्रयोग, इसी को
यही है, ये सबसे आसान बात है। अपने जहां ये हम अपने को गेय रूप से देख रहे हैं, अभी उसी को ज्ञान रूप से देखना है। ये गेय के प्रतिबिंब जो ये गेय तो यहाँ पड़ा है, अपने में क्या हुआ?
झलका।
तो वहां जो झलक रहा है उससे कुछ हम जुदे हैं क्या? जो प्रतिबिंब जहाँ है वही तो दर्पण है ना, उससे दर्पण कुछ अलग बात नहीं है। तो उसको हम प्रतिबिंब रूप से देखो या दर्पण के रूप से देखो, ये आपके हाथ में है किस रूप से देखना। ऐसे यहाँ पर गेयों की जो झलक चल रही है, हम पदार्थों को जान रहे हैं, उसको हम वो पदार्थ रूप से देखो अपने को, या अपने को ज्ञान रूप से देखो, या अपने हाथ की बात है। हम ज्ञान रूप से उसको जानते रहेंगे तो ज्ञान में अपने को अनुभव करेंगे। अभी पर पदार्थों रूप को जान रहे तो अपने को शरीर रूप अनुभव कर रहे, अपने को राग रूप अनुभव कर रहे। तो इसके लिए इसको सबको जानना छोड़ देंगे क्या? अरे जानना छोड़ देंगे तो वो ज्ञान नहीं रहेगा।
आपका कहना यह है कि चलिए हमने मिरर के सामने देखा, प्रतिबिंब देखा, जो किसी का भी प्रतिबिंब, वो बात छोड़ दो, लेकिन हम वो प्रतिबिंब को गौण करके दर्पण को देखता है।
हाँ।
तो तभी अपन को दर्पण की स्वच्छता आती है, क्योंकि ऐसे ही आप बोल रहे हैं जब ये जो भी करते मैं अपने दर्पण में अंदर आता है तो वो प्रतिबिंब निकाल दो और वो जो दर्पण है उसकी तरफ देखो।
आपने कहा प्रतिबिंब को गौण करो या प्रतिबिंब को निकाल दो, आप ऐसे कहें, निकालना नहीं है,
गौण करो,
पहले गौण भी नहीं करना है। जब हम किसी को मुख्य करते हैं तो अन्य गौण हो जाता है, करना नहीं पड़ता, क्योंकि करने के लिए हमको उसी की ओर देखना पड़ेगा तो वो कभी गौण नहीं होगा,
उपयोग आ जाता है।
जिसको गौण करना है उसके तरफ हम, जिसको मुख्य करना है उसको देखो, अन्य गौण हो जाता है। हमारे घर में मेहमान आए हैं, चार जन आए हैं, और चार जन है, एक जन भी क्यों नहीं आए, कोई मेहमान आके बैठे हैं और हम अपने बच्चे के ही साथ खेलते रहे, तो हमने क्या किया?
गौण कर दिया,
उसकी तरफ देखा ही नहीं ना। गौण करने के लिए हम कहाँ उसकी तरफ देख रहे, हमने किसी को बच्चे को ही मुख्य करके उसी के साथ खेल रहे तो वो गौण हो गया। इस तरह से गौण करना है ना, ये भाषा में तो ऐसा ही आएगा, इसको गौण किया, इसको मुख्य किया। एक को हम मुख्य करके जान रहे तो दूसरा गौण हो गया। देखो तत्व ज्ञान में पदार्थ झलक रहे हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, तब उन प्रतिबिंब को जानने में ही जो अटक जाता है, मग्न होता है, उसे ज्ञान का यानी आत्मा का, ज्ञान को ही आत्मा को एक ही, अभी ज्ञान को ही आत्मा का है, क्योंकि उसका वो असाधारण विशेष गुण है। और ज्ञान कहने से हम आत्मा को बता रहे, अकेले एक गुण को नहीं बता रहे, यानी ज्ञायकपने का भान नहीं होता, यानी मैं जानने वाला हूं ये भूल जाता है। जो कुछ जानने में आ रहा है वही सब कुछ है ऐसा जानता है, ऐसा मानता है। रीना मोहना, आज तक तुम दर्पण में अपना मुंह निहारती थी, अब दर्पण की स्वच्छता देखने की कोशिश करना। ये होता है कि नहीं गौण देख लेना, आप स्वयं देख लेना। अब आगे, यह जीव गेय तत्व को गेय न मानकर, अभी ये गेय यानी कौन से, जानने योग्य, तो जानने योग्य जो पदार्थ है उसको जानने योग्य न मानकर उसके ग्रहण त्याग का भाव करता है। अब ये जो अजीव तत्व है ना, अभी उसमें से मुख्यतः हम पुद्गल की बात करेंगे। ये शरीर है, ये सोफा है, घरदार है, बाल बच्चों को भी हमने अजीव तत्व में डाला था ना, अन्य पदार्थों को, ये सब क्या है? अजीव तत्व है। तो अजीव तत्व कैसे तत्व है? तो गेय तत्व है, जानने योग्य है। कैसे जानना था? ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, ऐसा जानना था। हमने क्या माना? मुझे इनका त्याग करना है। जब त्याग की बातें आती है तो हम क्या क्या देखते हैं? उसने घर बार का त्याग किया, बच्चों का त्याग किया, पैसे का त्याग किया। अरे पर ये पदार्थ तेरे थे क्या? मैं अभी कहूंगा, आप कहूंगी आपको, मुझे वो आपके यहाँ मायामी बीच का त्याग करना है, व्हाइट हाउस का त्याग करना है। आप कहेंगे आपके है कहाँ ये सारे यहाँ? तो जो आपका है ही नहीं उसका क्या त्याग करोगे? अजीव पदार्थों को ये पर है, मैं इस रूप नहीं और ये मेरे रूप नहीं है, ये मुझ रूप नहीं है, ऐसा जानना था। इसको जानने को कहेंगे वो गेय तत्व है। तो हमने या तो उसको उसी में जानने में हम रह गए, गेय कहा ना जानने योग्य, तो हमने क्या किया सुबह से शाम तक उसी में जानने में लगे रहे। कैसा जानना था, ये मैं नहीं हूं ये मेरे नहीं है ऐसा जानना था, उसको कहेंगे गेय तत्व। तो कहते कि लोग सोचते हैं हमें धन संपत्ति घरबार का त्याग करना हुआ होगा, तो उसने अजीव तत्व को यथार्थ नहीं जाना, कि जिसका कभी जीव तत्व में प्रवेश ही नहीं हुआ है उसका त्याग करने की बुद्धि हास्यास्पद है। इसलिए यही वही मैं उदाहरण दिया, मैं अगर तुम्हें कहूं कि मैं अमेरिका के व्हाइट हाउस का और आगरा के ताजमहल का त्याग करने वाली हूं, तो तुम मुझे मानसिक रुग्ण समझकर उपचार करने की व्यवस्था करोगे। माँ को कुछ हो गया अभी उसको इलाज करने की जरूरत है। अजीव तत्व को गेय तत्व न मानकर हे यानी छोड़ने योग्य या उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य मानना, यही बड़ी भूल है। तत्व ज्ञान रूपी उपचार की उसे आवश्यकता है। यहां हम कोई कहते नहीं कि इसको उपचार की आवश्यकता है, हम तो इसको ग्रहण करना चाहिए, इसको त्याग करना छोड़ना चाहिए, इसे कहते ना इसका त्याग करो उसका त्याग करो उसका त्याग करो, ये मत खाना वो मत खाना, वो तो चरणानियोग की भाषा है, परंतु हमने मान्यता में भी वो छोड़ने लायक समझा। तो क्या छोड़ना, उसके प्रति जो हमारी गृद्धता है लालसा है उसको छोड़ने की बात थी, आश्रव तत्व को छोड़ने की बात थी, राग को छोड़ने की बात है। इसने किसको छोड़ने की बात समझी, ये पेन है ना मैं इसका त्याग करूं तो मैंने त्याग किया, त्याग करने के पहले ये मेरा है ही नहीं, मेरा इसका कोई संबंध नहीं है, मैं इसका कर्ता नहीं हूं मैं इसका भोक्ता नहीं हूं, ये मान्यता में लेना सम्यक दर्शन करना ये पहले में पहले त्याग है, इसको तो करता नहीं है। और कुछ चीजें छोड़ना चाहता या वो उसको व्यवहार में जिसको हम त्याग करते वो करके मानता है मैंने त्याग किया। शरीर को मैं हिला डुला सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, ये मान्यता भरी पड़ी है। और फिर यानी ये घर मेरा है मैंने कमाया है, और फिर हमने क्या क्या त्याग किया, हमने इतने 10 वस्त्र रखने का भी प्रतिज्ञा ली, बाकी हमने सब त्याग कर दिया, एक घर के अलावा बाकी सबका त्याग किया, हमने मोटर में बैठने का त्याग किया, ये सारा त्याग समझता है। परंतु पहले में पहले मूल मान्यता ये अजीव तत्व है, मेरे है नहीं है, मैं इनका ना करता हूं ना भोगता हूं, ये मान्यता उसने की नहीं है तो ये उसका त्याग नहीं कहलाता। इसीलिए जब द्रव्यलिंगी मुनि की बात आती है या अन्य व्रतियों की बात आती है, क्या किया, घर बार छोड़ा, वस्त्र भी छोड़े, पात्र आदि कोई परिग्रह सब कुछ छोड़ दिया, परंतु अभी शरीर मैं हूं, ये राग भाव मेरे है, ये मान्यता छूटी नहीं है। शरीर की क्रिया को ही मेरी अपनी क्रिया मानता है और इसी से मोक्ष होगा ऐसे भी मानता है, इसलिए उसका मिथ्या तो छूटा नहीं है। तत्वों को जानने में उसने भूल की है, क्योंकि बाह्य त्याग तो दिखाई देता है, कहते हैं अरे आपको क्या बोलने की, उसमें किसने परमिशन दिया, उनके संयम तो है कि नहीं है, कहते हैं ना उनके त्याग है ना, इतना त्याग हुआ क्या आपसे,
हमारे से तो
ऊंचा है, ये हमारे से तो ऊंचा है, हमने इसमें से देखा ना कि निर्मोही जो गृहस्थ है वो मोही मुनि से भी श्रेष्ठ है। रत्नग्रहण शावकाचार में 33 नंबर का श्लोक है और वो आजकल नहीं लिखा है, समंत भद्र आचार्य ने पहली सदी में लिखा है उसको, यहाँ लिखा है गृहस्थ होकर भी यदि व्यक्ति निर्मोह यानी सम्यक दृष्टि है तो वो मोक्ष मार्ग में है, क्योंकि वो संसार से और भोगों से उदासीन हुआ है, उसने अपना आत्मा का अनुभव कर लिया है। परंतु मुनि होकर जो वनों में रहते हैं और उस वैसा करने पर भी अगर वो मिथ्या दृष्टि है, मोही है का अर्थ क्या, मिथ्या दृष्टि है, तो मुक्ति के मार्ग में नहीं है, अभी उनका कोई मार्ग शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ कल्याण का पात्र है, यहां समय दर्शन के महात्मा बताते हुए ये बात बताई है उन्होंने वहां पर। अब हम यहां देखते हैं कौन से तत्व कैसे हैं। देखो पुस्तक में यहां जो 3 बातें बताई, गेय हेय और उपादेय, मिला आपको। गेय यानी जानने योग्य, वो जानने मात्र के लिए योग्य। कैसे? अजीव तत्व है या नहीं, छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य। कौन से? ये मान्यता में लेने हैं। पहले मान्यता सुधरे बिना हम इसको यहां से उठाकर पटक देंगे, बाहर फेंक देंगे, तो त्याग हुआ कि नहीं हुआ? उसको त्याग नहीं कहेंगे। त्यागने योग्य कौन है? आश्रय और बंध तत्व। उपादेय शब्द के तीन भेद है। एक तो है आश्रय करने योग्य उपादेय। आश्रय करना है उसी में लीन हो जाना। ऐसा कौन है सात तत्वों में? बोलो। हाँ, जीव तत्व, जो मैं स्वयं हूं, तो कहते हैं जीव तत्व। नहीं तो आश्रय किसका करना? सिद्ध भगवान का कि अरिहंतों का? अपना स्वयं का। एक देश ने आंशिक प्रकट करने योग्य उपादेय। इन्हें उपादेय में क्या है? प्रकट करने योग्य। तो संवर और निर्जरा तो आंशिक है, पूर्ण शुद्धि तो है ही नहीं है, तो वो कैसे? आंशिक है। आंशिक को ही पार्शल यानी एक देश प्रकट करने योग्य, वो कौन से है? संवर और निर्जरा। और मोक्ष तत्व कैसे? पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय। अब हमने अरिहंत भगवान को देखा है, अरिहंत और सिद्ध। वो हेय है, गेय है कि उपादेय है? उपादेय।
हाँ,
तीन है। हेय गेय उपादेय में से कौन है? गेय। आप क्या कहते हैं? गेय है। क्यों? वो अजीव तत्व है मेरे लिए। तो वो हमारे मोक्ष मार्ग में साधक है कि बाधक है?
बाधक है।
ऊपर जाने में तो पहले तो
अपने आप का करेंगे तभी तो
वो बाधक है।
हाँ, बाधक है।
कौन? अरिहंत भगवान बाधक है।
अपने स्वरूप में लीन हो रहा है ना।
उन्होंने क्या किया आपको? सिद्ध भगवान तो है विराजमान, अनंत सिद्ध है। वो बाधक समझेंगे तो वो हमारा कभी कल्याण ही नहीं होगा।
एक
गेय तत्व।
हाँ,
क्या कहा बेट?
हमने वही बोला, गेय तत्व उनको जानना है, जैसे है वैसे ही उनको
जानना है। वो मैं नहीं हूँ ऐसा जानना है, वो मेरा कुछ नहीं करते ऐसा जानना है।
आपने अभी कहा
मैं बाधक है कि साधक है, ऐसा मैंने पूछा।
तो साधक होगा।
साधक यानी हेल्प करने वाले।
अरिहंत का ही उपदेश हम
लेंगे,
बाधक तो
अपने अपने उठाते तो छोड़ देते।
देखो मोक्ष मार्ग कैसे शुरू होने वाला है?
अपने
आश्रय से।
तो मैं वो भी हम जानते,
वो तो अजीव तत्व ही गेय है।
ठीक है,
तो ना साधक है ना बाधक
है।
उनका उपदेश ग्रहण करके हम अपना आश्रय लेंगे, उससे अपना मोक्ष मार्ग शुरू होगा। अब मैं प्रश्न पूछूंगी, उनकी भक्ति साधक है क्या बाधक है? अरिहंत के प्रति जो राग है
वो बाधक है।
हाँ, वो बाधक है, उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अरिहंत है, यह है वो। अरिहंतों की भक्ति करते करते समय दर्शन नहीं होगा, पहले भक्ति के भाव आएंगे उसके, परंतु जिस समय भक्ति कर रहा है उस समय केवल ज्ञान होगा कि नहीं? भक्ति कर नहीं होगा, क्योंकि जो मुनिराज होकर अपने आत्मा में लीन हो जाएंगे तो उन्होंने आश्रय को हेय कर दिया। कहने से हेय नहीं होते, वो राग को छोड़कर आत्मा में लीन होना ही उसको हेय करना है। बोलना है आपको कुछ?
इसमें ऐसा नहीं समझना कि अरहंत की भक्ति छोड़ देवे, वो बात नहीं बता रहे। जब स्वरूप में लीनता हो रही है,
श्रद्धा में लेने की बात है, श्रद्धा की बात है। यानी अरिहंत की भक्ति जो है वो शुभ राग है, वो बाधक है ना, तो हमने उसको साधक माना। ये देखो, अपने कहीं कहीं अभिप्राय में जो छोटी में छोटी भूल है वो हमें ही ढूंढनी है। ये ऐसे उल्टे पुल्टे प्रश्न क्यों पूछना है? अपने को बराबर सही रास्ते पर अभिप्राय सही करने के लिए। तो यहां हम देखते हैं, देखो जो हमने पहले दृष्टांत देखा था ना, दूसरों के घरों को जानते रहने से सुख नहीं मिलता, ये गेय है सारे। परंतु वे घर मेरे नहीं है, मात्र इतना जानना ही कार्य कार्य। हम क्या दूसरों के घर ही देखते बैठे? पुद्गल को ही जानने में रस है, उससे सुख नहीं मिलने वाला। वे मेरे मात्र गेय है, उन घरों का मुझे त्याग करना चाहिए ऐसा मानना गलत है। दूसरों के घरों का त्याग करना है कि नहीं करना? अरे वो तो है ही नहीं ना तेरा, क्या तू क्या त्याग करेगा? क्योंकि वे घर मेरे नहीं ने, तो उनको हेय मानना भ्रांति है। हाँ, वैसे ही हम पुद्गलों का त्याग करिए, अरे वो परद्रव्य ही है, पहले ये तो जान लो, उसको सही मान लो। उसी तरह दूसरे घरों से मैं सुख प्राप्त करूंगा मानना, अर्थात उन्हें उपादेय मानना भी भ्रांति है, क्योंकि उनके घर वो सुख अपने कोई काम का नहीं, अपना उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। पुद्गल में कोई सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो वहां से सुख मिलेगा तो नहीं, परंतु अरिहंत भगवान में तो सुख है ना, अनंत सुख है, तो वहां से तो मिलेगा कि नहीं? वो भी नहीं मिलेगा, वो परद्रव्य है, उसका मेरा कोई संबंध नहीं है। वे घर दूसरों के हैं, मेरे नहीं, मेरा सुख मेरे घर में है, ऐसा जानना यथार्थ जानना है। और इस तरह से जानने पर ही अन्य घरों का यथार्थ ज्ञान हुआ कह सकते। दूसरे के घरों को जानना कैसे जानना? ये मेरे नहीं है ऐसा जानना। हम क्या कहते, दूसरों के घरों को जानो, हम क्या करें उसी को ध्यान करने लग जाएंगे दूसरे के घरों का, तो हमारा कल्याण होगा कि नहीं? कैसा जानना था? ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं, ऐसा जानना था। ऐसे शरीर मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं, ऐसा जानना था, तो हमने तो उसी का ध्यान करना शुरू कर दिया। ख्याल में आता है ना कहां कहां अपनी भ्रांति हो रही है? अभी ये हम दृष्टांत में देखा है, वैसे ही अजीव तत्व मात्र गेय तत्व है, वह स्व तत्व नहीं है, पर तत्व है। अजीव तत्व हमने सभी अनंत जीव और पुद्गल धर्म सबको दिया था। मेरा सुख स्व तत्व में है, पर तत्व में नहीं है, तथा अजीव तत्व है या नहीं है, वो छोड़ने की बात नहीं, क्योंकि वो परद्रव्य, क्योंकि उसका मेरे में अभाव ही है, तो मैं उसे किस तरह त्याग सकता हूं? मेरा और उसमें तो अत्यंत अभाव है। अजीव तत्व उपादेय भी नहीं है, क्योंकि उसमें मेरा प्रवेश ही नहीं है। इस प्रकार से अजीव तत्व को जानना यथार्थ जानना है, इसको कहेंगे यथार्थ जानना, उसी को कहेंगे, इसको हमने गेय बनाया। नहीं तो हम गेय बनाना है ना, उसी को जानने में रस लेते हैं, उसको ध्यान का ध्येय बना देते हैं, उसको गेय नहीं, वो जानना है। कैसे जानना? यह मैं नहीं हूं, यह मेरा नहीं है, ऐसा जानना ही उसको हम कहेंगे गेय तत्व को हमने जान लिया। बाकी जो है आगे के जो तत्व है उसकी बात हम कल करेंगे। 2400 भगवान की जय।